भगवान ने वृंदावन लीला की, पहला तो गोकुल लीला, वृंदावन लीला, फिर मथुरा लीला, मथुरा लीला के बाद भगवान करते हैं द्वारका लीला। और जब भगवान द्वारका में लीला करते होते हैं तो द्वारका में पूरा ऐश्वर्य और बहुत अच्छी तरह से सेवाएं होती है, 16,108 पटरानियां होती है, सब कुछ आनंद मंगल होता है, फिर भी भगवान चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, कभी कभी भगवान रोते हैं, और कभी कभी स्वप्न में राधे ललिता विशाखा यशोदा मैयाओं के नाम पुकारते हैं। इन सब शब्दों को सुनकर और कृष्ण का रोने का दृश्य देखकर पटरानियां दुखी रहती है, और वो सोचती है कि हम इतनी अच्छी तरह से सेवा करते हैं कृष्ण की, फिर भी कृष्ण क्यों दुखी है। और एक बार नारद मुनि से पूछती है, नारद मुनि जब जाते हैं द्वारका में कि हे नारद मुनि हमें बताइए कि हमारे स्वामी कृष्ण रात दिन राधे ललिता विशाखा किन का नाम पुकारते हैं, उससे पूछती है, पूछते हैं पटरानियां। नारद मुनि बताते हैं तो वृंदावन के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, और उनके याद में भगवान रोते हैं, उनसे बताते हैं। तो उनके दर्शन की इच्छा होती है ब्रजवासियों की, तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि यदि जल्दी ही शीघ्र ही आपकी इच्छा पूरी होगी। और उसके बाद नारद मुनि वृंदावन में जाते हैं, और वृंदावन में भी गोपियाँ इसी तरह रोते रहती है, जैसे भगवान द्वारका में गोपियों की याद निकालते हैं, ऐसे वृंदावन में गोपियाँ कृष्ण की याद करके रोती है, बहुत रोती है। और जैसे जल के बिना मछली तड़पते रहते हैं, ऐसे गोपियाँ तड़पते रहती है। तब नारद मुनि गोपियों को बोलते हैं कि अरे गोपियों, क्या आप यूं ही कृष्ण की राह देखते रहोगी या कुछ करोगी? आप ऐसे ही अभी कृष्ण कब आएंगे पता नहीं, तो आपको कुछ करना चाहिए। तो गोपियाँ बोलती है कि हम क्या करें? तो नारद मुनि बोलते हैं यदि कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो आपको जाना चाहिए कृष्ण से मिलने के लिए, आपको कृष्ण के दर्शन के लिए मिलने के लिए जाना चाहिए। ऐसे नारद मुनि गोपियों को प्रवचन देते हैं। तो गोपियां तैयार हो जाती है और सब गोपियां ग्रुप में कीर्तन करते हुए द्वारका की ओर प्रस्थान करती है, और द्वारका की ओर जाती है कीर्तन करते हुए। करोड़ों की संख्या में गोपियां होती है, और इधर द्वारका में भगवान को पता चल जाता है कि ब्रजवासी लोग मुझे मिलने के लिए द्वारका आए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर गोपियों से मिलने के लिए गोपी तालाब पर आते हैं। द्वारका से पहले एक तालाब है, उसका नाम है गोपी तालाब, जिस गोपी तालाब की मिट्टी सारे वैष्णव लोग अपने माथे पर लगाते हैं तिलक के रूप में। तो गोपी तालाब पे आ जाते हैं और गोपियों से मिलने का अरेंजमेंट सब वहीं होता है, और वहाँ पर ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को जो द्वारका का राजा का वेश होता है, मुकुट होता है, बड़ा सुंदर अलंकार हीरे ज्वाहरात वगैरह डालते हैं भगवान, तो सब श्रृंगार निकाल कर वृंदावन के भेष में सजाते हैं, फल फूल पत्तियों से माला झूला बनाते हैं, झूला के ऊपर राधा रानी और कृष्ण को बिठाते हैं, और कुछ गोपियाँ झूला करती है, कुछ गीत गाती है, चामर डुलाती है, और इस प्रकार से लीला गोपी तालाब के ऊपर द्वारका के पास वृंदावन लीला प्रकट होती है। और फिर नारद मुनि द्वारका में जाते हैं और उन पटरानियों को बताते हैं जिन गोपियों का आप नाम सुनते थे, जिन गोपियों को आपने देखने की इच्छा किए थे, वो गोपियां तो द्वारका के करीब आ चुकी हैं, गोपी तालाब के पास आप उनसे मिल सकते, दर्शन कर सकते। तो ये पटरानियां सब द्वारका से महलों से बाहर आकर कहाँ आती है, गोपी तालाब पर। और गोपी तालाब पर आकर क्या देखती है कि राधा रानी कृष्ण झूले के ऊपर बैठे हैं, ललिता विशाखा झूला कर रही है, गीत गा रहे हैं, तो बहुत सुंदर दृश्य होता है। पर सभी पटरानियां शर्मा जाती है, लज्जा आती है उनको, शर्म जाती है, क्योंकि आज तक भगवान कभी किसी पटरानी के साथ एक आसन पर बैठे हुए एक दूसरे पटरानियों ने नहीं देखा था। सबको लगता था कृष्ण हमारे साथ ही है, हमारे से ही ज्यादा प्रेम करते हैं, पर आज जो उन्होंने दृश्य देखा तो बहुत ही उनको लज्जा आई दूसरे स्त्रियों के साथ कृष्ण बैठे, तो सब शर्मा करके लज्जा करके महल में चले गए। लेकिन उसमें से एक पटरानी थी जो रूठ गई, उसका नाम है रुक्मिणी मैया। हम सभी वैष्णव प्रभुपाद जी का कृष्णा बुक पढ़े हैं और वहां लिखे रुक्मिणी प्रणय लीला है ना, रुक्मिणी से मजाक करते भगवान, रुक्मिणी को रुक्मिणी का रूठा हुआ चेहरा देखना चाहते थे भगवान, कि रुक्मिणी कभी रुकती नहीं, इतना प्रेम करती पहली पटरानी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसका उनका रूठा हुआ चेहरा देखना चाहते थे, उनको बहुत मजाक करते, अरे रुक्मिणी आपने क्या किया, मुझसे शादी करके आप फंस गई है ना, आपने अच्छा नहीं किया, शिशुपाल से शादी करना चाहिए था, बहुत सारा बड़ा कथा है वो, तो फिर भी रुक्मिणी नहीं रुकती है, लेकिन इस लीला में भगवान सफल हो जाते हैं रुक्मिणी को रूठाने में, और रुक्मिणी रूठ जाती है, और रुक्मिणी रूठने के बाद कहाँ आती है, हर स्त्रियां रूठने के बाद कहाँ जाती है, मायके में जाती है, तो रुक्मिणी का मायका है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौंडिन्यपुर अमरावती के पास, लेकिन उनके पिताजी ने बताया कि अरे भगवान तो द्वारकाधीश है और उनकी हजारों पटरानियां है, और ये आप जो बता रहे हैं तो कॉमन है, इसमें कोई रुठने वाली बात नहीं है, वो तो सभी से प्रेम करते हैं, आपको वापस जाना चाहिए भगवान के पास, तो रुक्मिणी इतनी रूठी रहती कि वापस नहीं जाती और यहाँ आती पंडरपुर में, पंडरपुर में मतलब यहाँ पहले भगवान आने से पहले भी यह धाम था पंडरपुर धाम, तो भगवान द्वारका से रुक्मिणी को ढूंढने के लिए यहाँ आए तो उससे पहले भी पंडरपुर धाम था, और इस धाम को डिंडी रोहन कहते थे, जो चींच चींच बोलते हैं गंगा जी, इमली इमली तला था, तो इमली को डिंडी रो बोलते हैं, और उसका जंगल था, घनी छाव थी, और भगवान ने उससे पहले मल्लिकार्जुन अवतार लेकर एक असुर को मारे दिया, लोहदंड नाम का तीर्थ है, तो यहाँ आकर के तपस्या करने लगे रुक्मिणी मैया राधा रानी की तरह अपने भाग्य को उज्जवल करने के लिए, और सभी पटरानियां तो रूठ कर चले गई। इसके बाद गोपियों ने भगवान की सेवा की, भगवान को चंदन लगाए, भगवान की पूजा की, उसके बाद भगवान द्वारका गए और गोपियों ने उधर ही शरीर छोड़ दिया, जो गोपियों ने शरीर छोड़ा उससे गोपी चंदन बना है गोपी तालाब में, और ऐसे भगवान ने लीला समाप्त की, यहाँ पर गोपियों का लीला समाप्त हो गए। तो भगवान द्वारका में जब गए तो सारी पटरानियां थी पर एक नहीं थी रुक्मिणी मैया, तुरंत भगवान ने रुक्मिणी मैया को ढूंढने के लिए रथ सजाए और निकल पड़े रुक्मिणी मैया को ढूंढने के लिए। तो एक उसका भाग है कि रुक्मिणी मैया को ढूंढना, ढूंढने के बहाने पंडरपुर आना, और वास्तविक कारण था, जैसे भगवान कोई लीला करते हैं तो उसका एक बाह्य कारण होता है और एक आंतरिक कारण होता है, तो उसका एक आंतरिक कारण ऐसा था कि एक बार भगवान द्वारका में सर पे हाथ रख के ऐसे बैठे थे, और नारद मुनि उसी समय वहां पहुंचे, और नारद मुनि बोले कि प्रभु आप द्वारकाधीश है और आप चिंतित है क्यों, तो भगवान ने बताया कि नारद मुनि मेरे कृष्ण अवतार की लीला में इतनी सारी मैंने लीलाएं की है कि जिसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन मेरी इस लीला में मैंने मेरे माता पिता की सेवा नहीं किया, जैसे मैं हर अवतार में माता पिता की सेवा करता हूँ, जैसे परशुराम अवतार में है ना माता पिता की सेवा की, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में मैं माता पिता की सेवा नहीं किया, बल्कि मेरे इस अवतरण के कारण मेरे माता पिता को बहुत तकलीफ हो गई है ना, वसुदेव देवकी को जेल में रहना पड़ा, नंद बाबा और यशोदा को रोज कंप्लेन आती थी, तो मेरे कारण मेरे माता पिता को तकलीफ हुआ, लेकिन मैं उनकी सेवा नहीं कर सका, मैं सारी दुनिया को कैसे सिखाऊं कि माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए। तो नारद मुनि बोलते हैं कि प्रभु ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं कि हर चीज आपको ही सिखाना है, सारी दुनिया आप अपने भक्तों के द्वारा भी सिखा सकते हैं। बोले ऐसा भक्त कौन है जो माता पिता का इतना प्रेम से सेवा करते हैं, तो बोले एक भक्त है उसका नाम है पुंडरीक, और बहुत ज्यादा पुंडरीक बोलते हैं, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में पुंडलिक बोलते हैं, तो पुंडलिक है जो महाराष्ट्र पंडरपुर में रहकर अपने माता पिता की सेवा करता है और बहुत अच्छी तरह से करता है, माता पिता को पहले खिलाता है फिर खाता है, माता पिता को पहले नहलाता है फिर नहाता है, पहले उनको सुलाता है फिर सोता है, और उनके उठने से पहले उठ जाता है, बहुत अच्छी तरह से माता पिता की सेवा करता है। तो आप उस पुंडलिक के ऊपर कृपा करिए, तो जब आप पुंडलिक के ऊपर आप कृपा करेंगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हैं उसके ऊपर भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आप ऊपर कृपा करिए। तो भगवान बोलते वो तो मेरे को बुलाता भी नहीं, तो बुलाए तो जाएंगे ना, बिना बुलाए कैसे जाएंगे, इसलिए भगवान ये लीला कर रहे थे। कौन सी? रुक्मिणी मैया की। रुक्मिणी मैया रुट कर पंडरपुर में आई और इसी पंडरपुर में कुंडली भी रहता था पहले से, अपने माता पिता की सेवा करते थे। तो जब भगवान रुक्मिणी को मनाने के लिए यहाँ आए तो रुक्मिणी ऑलरेडी तपस्या में जा चुकी थी, ऐसे तपस्या में बैठ चुकी थी। कोई यदि तपस्या कर रहा हो या ध्यान कर रहा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। तो भगवान ने रुक्मिणी को प्रोटेक्शन लगा दिया, जो भी मंत्री संती हाथी घोड़ा जो भी लाए थे रुक्मिणी की रक्षा के लिए रख दिए। और वहां से भगवान कुंडली भगवान कृष्ण रुक्मिणी को वहीं रखकर रुक्मिणी में सॉरी कुंडलिक के पास गए और कुंडलिक को कहे कि ये कुंडलिक देखो मैं आया हूँ द्वारकाधीश स्वयं भगवान ईश्वर, आप मुझसे क्या वरदान चाहते हो, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। लेकिन कुंडलिक बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए नहीं, वो तो बाद में बोला। पहले बोले ठीक है प्रभु आप आए हो लेकिन मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ। किस काम में? मेरे माता पिता की सेवा करने में व्यस्त हूँ। उनके माता पिता को स्वर को उन्होंने ऐसे रखा था, मांडी बोलते ना क्या होते, गोद में गोद पर रखा था और उनके चरणों को सहला रहा था। तो भगवान जब आए तो उठा भी नहीं, इतना माता पिता का सेवा करता था। भगवान को और अच्छा लगा कि देखो मैं आया हूँ द्वारकाधीश फिर भी अपने माता पिता का सेवा करने के लिए उठ नहीं रहा है, कितना प्रेम से सेवा करता होगा। तो भगवान उसकी प्रतीक्षा करने के लिए खड़े हो गए रुक गए। और कुंडलिक ने भगवान आया है तो भगवान का भी आदर करना चाहिए करके एक ईट, ईट बोलते हैं ना, एक पत्थर की ईट उठाकर फेंक कर दे दी भगवान को और बोले प्रभु आप इसके ऊपर प्रतीक्षा करिए, जब मेरी सेवा खत्म हो जाएगी मैं आपको निवेदन करूँगा। और फिर माता पिता को सुलाने के बाद कुंडलिक गया और भगवान तब तक रहा देख रहे थे। ऐसे महाराष्ट्र के संत लोग बोलते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान वो ईट इतनी छोटी थी उस पर बैठ भी नहीं सकते थे तो उस पर खड़े हो गए और खड़े खड़े भगवान के हाथ दुखने लगे, पैर दर्द करने लगे, तो भगवान ने कमर पे हाथ रख दिए और खड़े हो गए कुंडलिक की राह देखने के लिए। और जब कुंडलिक आए तो कुंडलिक ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करना, ये मेरा व्रत है, मेरे माता पिता का सेवा में थोड़ा भी कमी नहीं रहना चाहिए, इसके लिए मैं आपका आदर नहीं कर सका ठीक से, तो मुझे क्षमा करना। तो भगवान बोले आप जो माता पिता का सेवा करते हो इतना प्रेम से इसलिए मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, जो मैं नहीं कर सका वो आप कर रहे हैं और मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ तो वर मांगो। तो कुंडलिक ने कहा मैं क्या वर मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप इधर ही रुकिए, भगवान को प्रार्थना किया कि आप इधर ही रुकिए, मेरे माता पिता को सब जीवों को दर्शन दीजिए। तो भगवान बोले तथास्तु, और कुछ चाहिए भगवान, और कुछ देना चाहते थे। तो कुंडलिक ने कहा कि मुझे अभी मेरे माता पिता बूढ़े हैं ना, उनकी सेवा करता हूँ, तो मैं आपके वृंदावन मथुरा द्वारका मैं कहीं नहीं जा सकता तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो कृपा करके आपने जो वृंदावन में मथुरा में द्वारका में जो भी लीला की है सब लीला का मुझे दर्शन कराओ। जैसे कोई टेलीविजन में वीडियो देखता है नेट से, तो भगवान ने उसको सारी लीला दिखाई अपने फिर से। तो यहाँ पर भगवान ने वही वृंदावन लीला किए हैं, द्वारका लीला किए हैं और कुंडलिक के वचन के कारण भगवान यहाँ रुके हैं और वो ईट के ऊपर खड़े हो गए, इसलिए कृष्ण का नाम हो गया विट्ठल। विट्ठल विट और ठल, जो वीट के ऊपर अटल रूप से खड़े रहते हैं उनको विट्ठल बोलते हैं, यहाँ से कहीं जाते नहीं। इस प्रकार से भगवान का नाम हो गया विट्ठल, इसलिए विट्ठल ठाकुर बोलते हैं। और चैतन्य चरितामृत में भी विट्ठल ठाकुर आया है ना, चैतन्य महाप्रभु का लीला में कथा है ते गौरचंद्र पंडरपुर आईला विट्ठल ठाकुर देखी आनंद पाईला, है ना। इसके तो चैतन्य महाप्रभु का भी लीला है और वो सब आप लोगों को पता ही होगा, चैतन्य चरितामृत में पूरा वर्णन है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ खड़े रहे कुंडलिक के लिए, कुंडलिक वचन दिए मैं यही हूँ। तो महाराज बता रहे थे परम पूज्य रत्ना स्वामी महाराज कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन जब अपने भक्त को कोई वचन देते हैं तो उसको नहीं तोड़ते। अर्थात भगवान यहाँ पर ईट के ऊपर अटल रूप से खड़े हैं, कुंडलिक के लिए नहीं तो सारे भक्तों के लिए। और आदि शंकराचार्य जब पंडरपुर में आए थे तो उन्होंने भी पांडुरंग अष्टकम लिखी, जैसे जगन्नाथपुरी में जाने पर वो जगन्नाथ अष्टकम लिखते है ना, जो भी धाम में जाते हैं वहाँ का भगवान का वो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर 8 श्लोक लिखा है, तो उसमें पूरा कृष्ण का वर्णन है। महायोग पीठे तटे भीम रत्या वर कुंडलिकाय धातुमुनिन्द्रे समागत तिष्ठन् तन्मानंद कन्दम् परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। तो पर महायोग पीठे, इसको योग पीठ कहा गया है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान को भी योग पीठ कहा जाता है। तो इस योगपीठ नाम के स्थान पर महायोग पीठे तटे भीमरथ्या, जो भीमरथी नदी है इसका नाम है भीमा। तुकाराम महाराज बोलते हैं भीमा आणि चंद्रभागा तुझी चरणाची गंगा, मराठी में बोलते हैं कि भीमा नदी है साक्षात भगवान के चरण से निकलने वाली गंगा से अभिन्न है, ऐसा लिखते हैं, चरणों की गंगा है। तो इस गंगा नदी के तट पर महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम कुंडलिकाय धातु मुनिन्द्रे, कुंडलिक को वरदान देने के लिए अनेक ऋषि मुनियों को दर्शन देने के लिए उनके साथ रहने के लिए भगवान यहाँ पर आए हैं। समागत तिष्ठन्तम, समागतम सम्यक रूप आगतम, पूरी तरह भगवान यहाँ पर आएगा, पूरी तरह आएगा। समागत तिष्ठन्त आनंद कंदम, और भगवान को ने आनंद कंदम परब्रह्म लिंगम भजन। तो ऐसे परब्रह्म लिंग भगवान विठल जी का मैं भजन करता, ऐसे बहुत सारे श्लोक लिखे उन्होंने। विभुम मेरुनादम चरम तम दुरंतम स्वयं लीलया गोपवेशम ददानम गवाम वृंदकानंदम चारुहासम परब्रह्म लिंगम भजे पांडु। प्रत्येक श्लोक के लास्ट में लिखते हैं हाँ पांडुरंग अष्टकम। प्रभु जी पूछ रहे पांडुरंग क्यों बोलते हैं भगवान को, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हर इसका परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंग ऐसे लिखते हैं। तो भगवान का एक नाम तो विठल हो गया पंढरपुर में आने से, और दूसरा नाम हो गया पांडुरंग। सब लोग पांडुरंग बोलिया,
पांडुरंग पांडुरंग
पांडुरंग
पांडुरंग विठल विठल
पांडुरंग
पांडुरंग
ऐसे कीर्तन होता है, विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग कीर्तन। तो पांडुरंग मतलब पांडु मतलब सफेद, रंग मतलब रंग, जैसे हम लोग बोलते हैं गौरंगा गौरंगा
गौरंग,
वो गौरंग और पांडुरंग का एक ही अर्थ है। महाराष्ट्र में जो पांडु पांडरा बोलते हैं सफेद को, है ना, तो ये इधर पांडुरंग इसलिए बोलते हैं कि भगवान जब वृंदावन में गाय चराने के लिए जाते हैं और गाय चरा कर जब लौटते हैं तो भगवान सफेद हो जाते हैं। कैसे, गाय के जो खुरों से जो धूल उड़ती है जंगल की, तो धूल भगवान के सब शरीर पर बैठ जाता है, बालों पर गांवों पर सभी जगह भगवान के आभूषणों पर भी पूरी तरह से बैठ जाता है। तो भगवान का रंग कैसे हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो वही रंग यहाँ रोज प्रकट होता है, वो रंग जो रंग वृंदावन में प्रकट होता है शाम के समय, वो रंग यहाँ सुबह सुबह रोज प्रकट होता है पंढरपुर में। जब भगवान को अभिषेक करते हैं दही दूध और घी से, तो जब दही दूध डालते हैं तो फिर से भगवान पांडुरंग हो जाते हैं, सारे वैष्णव जोर से चिल्लाते पांडुरंग
पांडुरंग।
तो वैसे भगवान का नाम पांडुरंग भी हो जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से, और जैसे चैतन्य महाप्रभु को हरि नाम प्रिय है ना, सबसे ज्यादा महाप्रभु को क्या प्रिय, हरि नाम, ऐसे विठल जी को भी हरि नाम प्रिय है। यहाँ महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि से भजन करते, राम कृष्ण हरि। तुकाराम महाराज को चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही मंत्र दिया, राम कृष्ण हरि बोल दिया, हरे कृष्ण और राम शॉर्टकट में दिया था, तो वो ऐसा ही जप करते हैं। कुछ लोग हैं हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप करते हैं, लेकिन वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस टाइप से जप करते हैं। तो इस प्रकार से हरि नाम का गजर बहुत होता है, और बहुत सारे भजन है, चालला नामा चा गजर अवघे गर्जे पंढरपुर, अवघे गर्जे पंढरपुर मतलब यहाँ हरि नाम की ऐसी गर्जना होती है। आप यदि आषाढ़ी फेस्टिवल में कार्तिकी वारी के समय में आएंगे तो देखेंगे सभी जगह आपको हरि नाम सुनाई देगा, सभी जगह अखंड हरि नाम सप्ताह हरि नाम होते रहते हैं। तो इस बहुत प्रिय है हरि नाम संकीर्तन। तो इस प्रकार से एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे, पंढरपुर धाम की कथा बता रहे थे, तो महाराज बोल रहे थे कि पंढरपुर भी मिनी मायापुर है, बोल रहे थे। हरी बोल,
हरी बोल।
मायापुर धाम है उसका मिनी मायापुर, और महाराज इसको वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से मायापुर भी जो जो है सब इस पंढरपुर धाम में है, और नहीं है तो होनी चाहिए, ऐसे महाराज बोल रहे थे। महाराज बता रहे थे कि मायापुर धाम भी गंगा नदी के तट पर है, ये भी चंद्रभागा भी गंगा ही है, गंगा के तट पर है, और महाप्रभु का नाम क्या है, गौरांग है, तो इनका नाम भी क्या है, पांडुरंग है। महाप्रभु को हरि नाम प्रिय है, तो विठ्ठल जी को भी क्या प्रिय है, हरि नाम प्रिय है। जिस प्रकार महाप्रभु बहुत कृपालु है, ऐसे विठ्ठल जी भी बहुत कृपालु है, और यहाँ विठ्ठल जी सबको चरण स्पर्श करने देते हैं, और कहीं धाम में जाएंगे आपको चरण स्पर्श नहीं होगा, होता है कहीं, यहाँ होगा चरण स्पर्श, तो विठ्ठल जी का विशेष कृपा है। तो बहुत सारी कथाएं हैं, समय के अभाव में हम सब नहीं बता सकते हैं, हमको दर्शन के लिए भी जाना है, तो यहाँ रुकेंगे। किस प्रभु की प्रश्न तुकाराम महाराज, तो इसके अलावा विठ्ठल जी जब यहाँ आए और भगवान यहाँ स्थापित हो गए, भगवान जी यहाँ रहे हैं, तो फिर भगवान के भक्त भी हुए हैं, और बहुत सारे भक्त हुए हैं, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, जनाबाई, रमाबाई, कपूरबाई, लेडीज है, जेंट्स है, सावका महाराज, चोखा महाराज, गोरा कुमार, ऐसे अनेक भक्त हुए, पर तुकाराम महाराज बहुत फेमस हो गए, क्योंकि उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया, और चैतन्य महापुरुष उनका संबंध है। प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महापुरुष जो पंढरपुर गए थे तो उन्होंने तुकाराम महाराज को दीक्षा दी, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ पर मान्य नहीं करते, महाराष्ट्र के लोग, लेकिन तुकाराम महाराज स्पष्ट लिखते हैं अपने गुरु के बारे में, वो लिखते हैं राघव चैतन्य केशव चैतन्य सांगीत लिखो न मारा चाहते कि जो राघव चैतन्य राम, राघव मतलब चैतन्य कृष्ण चैतन्य, उन्होंने स्वयं मुझे दीक्षा दी है, और स्वप्न में दीक्षा दिया करके बताते हैं। तो इस प्रकार से तुकाराम महाराज बताते हैं, और तुकाराम महाराज जन्मत ही वैष्णव परिवार में जन्म हुआ था, और परम भक्त थे भगवान के, और इनका जन्म स्थान है पुणे के पास, देहू करके गाँव है वहाँ पर, और हर एकादशी को वहाँ से चलकर पंढरपुर आते थे, हर एकादशी को चलकर आते हैं, उसको महाराष्ट्र में वारकरी बोलते हैं, वो वारी करते हैं, चलकर आते हैं, वारकरी बोलते हैं, तो उनका नियम था। आज भी वो परंपरा चल रही है तुकाराम महाराज के गांव से चलकर आने की, लेकिन हर एकादशी को नहीं आते, तो आषाढ़ी, कार्तिकी, चैत्र और माघ, चार बार वो चलकर आते, पर तुकाराम महाराज हर एकादशी को आते थे, और अभी जब चलकर आते हैं तो 18 दिन लगता है, और जबकि एकादशी तो 15 दिन में आती है, तो तुकाराम महाराज हर एकादशी को पंढरपुर आते थे, अकेले आते थे, जल्दी चलते होंगे, एक दो दिन में पहुंच जाते होंगे, फिर दो दिन में वापस, तो उनका यही ये था। और बचपन से भगवान के भक्त थे, परम भक्त थे, बचपन से ही कोई खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी, भगवान के भजन में रुचि थी, बड़े हो गए फिर शादी हो गया, ब्याह हो गया, लेकिन वो भजन नहीं छोड़े उन्होंने, तो उनका पत्नी बहुत परेशान रहती थी, वो भजन करते थे, इसलिए हमेशा भजन करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो घर के लोग तो परेशान हो गए ही ना तो वो बहुत गाली देती थी विठ्ठल जी को, ये विठ्ठल जी ने मेरे पति को पागल बना दिया, रहती ऐसे गाली देती। और एक बार विठ्ठल जी बीमार थे एकादशी के दिन, तो आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा विठ्ठल जी को, और जो लोग आते हैं उनके पास भेज दिया पत्र, और वो लोग आए, लाइन में रुके, लाइन में रुकने के बाद विठ्ठल जी के पास जाके पत्र पढ़ के सुनाए तुकाराम महाराज का, और विठ्ठल जी तुरंत वहाँ से निकल पड़े, आषाढ़ी के समय इधर लाखों लोग आए थे दर्शन के लिए, तो रुक्मिणी ने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, ये भी तो भक्त है जो लाखों लोग यहाँ आए आपके दर्शन के लिए, तुकाराम महाराज अकेला ही भक्त है क्या तो बोले हम उनको दर्शन लेके आएंगे, तो बोले नहीं नहीं ऐसा करो ना उनको यहाँ बुलाओ, तो कैसे बोला, तो गरुड़ जी को भेजे थे उनको लाने के लिए, गरुड़ जी गए तुकाराम महाराज को लाने के लिए, तो तुकाराम महाराज रहा देख रहे थे, मैंने पत्र दिया है तो क्या प्रतिक्रिया होगी भगवान की, तो गरुड़ जी आ रहे थे तो उनको लग रहा कि भगवान ही आ रहे हैं, बहुत खुश हो गए। लेकिन देखे गरुड़ जी आए हैं उनको लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके ऊपर नहीं बैठ सकता हूँ, आप भगवान के वाहन है, भगवान कृष्ण रूप में आपके ऊपर बैठते हैं, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, उनको वापस दे दी। तो फिर बाद में फेस्टिवल के बाद विठल रुक्मिणी वहाँ जाकर उनको दर्शन दिए देहू गाँव में जाकर, तो भी देहू गाँव भी दर्शन कर जाएंगे, तो वहाँ भी भगवान विठल रुक्मिणी के विग्रह है, वो प्रकटित है, स्वयं प्रकट भगवान उनके लिए वहाँ प्रकट किए हैं, क्योंकि वो हमेशा यहाँ आते थे ना, तो वो तकलीफ होती थी, भगवान उनके लिए वहाँ प्रकट हुए हैं। ऐसे शुद्ध भक्त थे तुकाराम महाराज, और इतना अच्छा भजन उनका, पूरे जीवन काल में इतना अच्छा भजन किया, इतना अच्छा भजन किया, और एक बार उनको लगा कि अभी भौतिक जगत में नहीं रुकना है, हमको भगवत धाम जाना चाहिए, तो सबको बोलने लगे अभी मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो सब लोगों को विश्वास नहीं होता था, पत्नी को तो बिल्कुल नहीं, पत्नी बोली तुम रोज जाते रहते हो, जाना है तो जाओ, और तुकाराम महाराज सब वैष्णव को बोले आज मुझे जाना है, सब अच्छे से भजन करिए, बहुत अच्छा भजन करे, बहुत अच्छे से गाए गाए, और गाते समय भजन के समय वैकुंठ से विमान आया और वो विमान पर चढ़कर इसी शरीर में चला गया तुकाराम महाराज। भागवतम में जो ध्रुव महाराज का कथा है ना, कि वो सो जैसे ऐसे तुकाराम महाराज इसी शरीर में चला गया वैकुंठ, और वो लिखते हैं लास्ट में हम जा तो हम चम च राम राम ध्यावातो हम च मराठी है, हम हमारे गांव जा रहे हैं, हमारा राम राम, सब संतों को राम राम बोलते चला गया। तो तुकाराम महाराज का चरित्र बहुत बड़ा है, आप यदि हिंदी भाषी है या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, तो महाराज ने पुस्तक लिखे हैं भू वैकुंठ पंडरपुर, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने पुस्तक लिखे हैं, तो उस पुस्तक को लेकर पढ़ सकते हैं, उसमें विस्तार से वर्णन है पूरा, हमने आपको संक्षिप्त में बताने का कोशिश की। हरे कृष्ण साढ़े 400 साल पहले। हाँ, महाप्रभु 500 साल हो गया।